झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी बुद्धिजीवी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष जी और हमारे संपूर्ण साहित्य के गौरव माननीय सुरेंद्र जी शर्मा, उपस्थित सभी मेरे अग्रज कविगण और आयोजक मंडल के सभी प्रतिनिधि, आप सभी का स्वागत करते हुए माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है। राजस्थान की वीर भूमि पर राजस्थानी भाषा में माँ शारदे की वंदना करने की इजाजत चाहता हूँ। आशीर्वाद लेते हुए पंक्तियां पढ़ रहा हूँ माँ शारदे की वंदना में।
मारी मात शारदे हिवड़ी दिवलो बाळ दे, मारी मात शारदे हिवड़े दिवलो बाळ दे, संकट का छाया बादल ने टाळ दे, शब्दा की घूगर माला सू गीता में रस डाल दे, री मारी मात शारदे हिवड़े दिवलो बाल दे, संकट रा छाया बादल ने टाल दे, जीवन का तम भरा कलस में रंग बासंती भर दे, जीवन का तम भरा कलस में रंग बासंती भर दे, अंतर की सोई वीणा का सुर ने मुखरित कर दे, अरि तन की सुनी चौपड़ पे, तन की सुनी चौपड़ पे मन चीत्या पासा राल दे, भारी मात शार दे हिवड़े दिवलो बाल दे, संकट आ छाया बादल ने टाल दे, जीवन की मरु धरा पे ज्ञान की ज्योति जला दे, जीवन की मरु धरा पे ज्ञान की ज्योति जला दे, आखर आखर फूल बना गीता की माल सजा दे, अरे मन का कोरा कागज पे, मन का कोरा कागज पे सत रंग गीत उघाड़ दे, मारी मात चार दे हिवड़े दिवलो बाल दे, संकट रा छाया बादल ने टाल दे, जी शब्द की घूगर माला सू, शब्द की घूगर माला सू गीता में रस डाल दे, मारी मात शार दे हिवड़े दिवलो बाल दे, मारी मात शार दे।
एक निवेदन, बाबू बंजारा ने सरस्वती वंदना से इस कवि सम्मेलन के दौर को आगे बढ़ाया। बाबू बंजारा को जैसा कि मैंने कहा था, राजस्थानी श्रृंगार में बाबू बंजारा के गीतों का जवाब नहीं, गीत गाते हुए स्वयं उछलते हैं, नाचते हैं, उन्हें आपका अगर आशीर्वाद मिले तो मैं चाहता हूं कि राजस्थानी के श्रृंगार से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की जाए। उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनसे उन्होंने सारे देश में बहुत ख्याति अर्जित की है। भाई बाबू बंजारा आए और अपने राजस्थानी के वे सुमधुर गीत इन श्रोताओं को समर्पित करें। भाई श्री बाबू बंजारा।
अरे क्या बात, मुझे क्या पता था आप यहीं बैठे हैं, आपकी सेवा में हाजिर करता हूँ, लड्डू और बाटी दोनों सारे, साथ में चूरमा भी लीजिए। मंच पर माँ शारदे की वंदना के साथ कविता पढ़ने का आदेश हुआ। और बिना विलंब के शुरू कर रहा हूँ। एक बात छोटी सी मैं आपको गीत से पहले जोड़ना चाहता हूँ। कभी कभी बिल्कुल हास्य के मूड में आप बैठे हैं और हास्य के हिसाब से ही मैं एक दो बात देखें, आप किस तरह से आप लोग भी सोचते होंगे कि कवि बिल्कुल जो है हाजिर जवाब होते हैं, एक दो बात आपस में आपकी सुनते हैं और हंसा देते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। और इसी के साथ एक बात, मैं बिल्कुल कोई चुटकला नहीं सुना रहा हूँ, मैं बिल्कुल हकीकत घटना आपको सुना रहा हूँ, छोटी छोटी एक दो। पैसे से अध्यापकों इस नाते स्कूल में भी हम इस तरह की बातें मिल जाती। देखें आप, एक बार चार पांच मेहमान हमारे घर सगाई के लिए आए और कहने लगे कि यार बंजारा जी, आपके शहर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताओ, हमारी लड़की है। मैंने कहा साहब व्यवस्था करेंगे, देखेंगे। तो उनसे आपस में बातें करते हुए उसने कहा कि साहब उसका संबंध वहाँ कर दिया, उस लड़की की सगाई वहाँ हो गई, उस बच्चे की सगाई वहाँ कर दी हमने। इस तरह की बातें वो आपस में करने लगे तो मेरे 6 साल का लड़का मेरे पास खड़ा हुआ और मुझसे बोला कि पापा, मैंने कहो बेटा क्या आपकी शादी किससे हुई। मैंने कहा यार इससे तुझे क्या लेना देना, मेहमान बातें कर रहे हैं, तू तेरा काम कर। कहने यार बताओ तो सही आपकी शादी किससे हुई। मैंने कहा यार मेरी शादी किससे होगी, तेरी मम्मी से। ओ का आप भी कमाल करते हैं, घर के घर में ही शादी कर ली। बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते हैं। तत्काल मुझसे कहने लगा वो मेरा मुन्ना के पापा, शादी तो मैं भी करूंगा। अरे मैंने कहा हद हो गई यार, तेरी पढ़ने की उम्र है, तू बड़ा हो जा उसके बाद तेरी शादी करेंगे। कि नहीं पापा शादी तो मुझे करनी है। मुझे भी आश्चर्य हो। मैंने कहा यार कोई लड़की वड़की देख ली कभी इस उम्र में ही। कि हाँ। मैंने कहा कौन है। कि मेरी दादी से शादी करूंगा, बताओ आप। तो गुस्सा आया मुझे और मैंने डांटा उस बच्चे को। मैंने कहा तुझे शर्म आना चाहिए, दादी से कैसे शादी करेगा नालायक। मैंने कहा वो तो मेरी मम्मी है। तो फिर आपने भी तो मेरी मम्मी से शादी कर ली, बच्चे तो बच्चे ही है साहब। इसी तरीके से आप देखो स्कूल में भी हमें किस तरह का मसाला मिलता है। मैं आपको एक बढ़िया बात बताना चाहता हूँ इसी के साथ। एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाली लड़की मेरे पास आई और बोली कि सर, मन के कहो बेटा, कई स्कूल के सारे लड़के मुझे रोज रोज चिढ़ाते हैं। मन के क्या कहते हैं कि सर मुझे बुआजी कहते हैं, मैं बहुत परेशान हो गई, रोजाना मुझे चिढ़ाते हैं। मन करे भाई ये बहुत गलत बात। तो साहब बच्चों को बुलाया अध्यापक होने के नाते और उनको डांटा। मन करे तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारी बहन है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो साहब बच्चों ने मेरी बात को माना, लेकिन एक लड़का चुपचाप कोने में बैठा हुआ मुझे आश्चर्य और जो शैतान था, मैंने उसको खड़ा किया। मैंने कहा मोहन लाल खड़े हो जाओ। तो मोहन खड़ा हुआ। मैंने कहा तू इस लड़की को बुआजी कहकर चिढ़ाता कि नहीं। कहा सर मैंने तो आज दिन तक कहा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, सब लड़कों से पूछ लो साहब। मैंने सब बच्चों से पूछा। मैंने कहा ये लड़का का साहब हमने तो नहीं सुना इसको कभी बुआजी कहते हुए। मैंने कहा वाह। तो मुझे और ज्यादा आश्चर्य हुआ और फिर उस लड़के को मैंने खड़ा करके थोड़ा सा डांट करके उसको समझाया और फिर पूछा। मैंने कहा मोहन सही सही बात बताओ यार, तुम इस लड़की को बुआजी कहकर क्यों नहीं चिढ़ाते हो, तुम तो बहुत शैतान लड़के हो। तो लड़का बड़ा सादगी के साथ खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा सर मैं इस लड़की को बुआजी इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि ये स्कूल के सारे लड़के मुझे फूफाजी कहते हैं। तो इस तरह की बात मिल जाती है। मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ, इसमें कोई चुटकला नहीं। इस तरह की घटना हुई मेरे स्कूल में। खैर कई बातें चलती रहती है। मैं छोटी सी बात एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूँ, देख रहे आप बिल्कुल नया और ताजा गीत पहली बार इस लोक कला मंडल के मन से और आप बुद्धिजीवी श्रोताओं के बीच में। लोक धुन पर आधारित मेरे सारे गीत है राजस्थानी के। एक अनमेल विवाह पर मैंने गीत लिखा, आप केवल 1 मिनट की भूमिका। गांव में आज भी ये प्रथा है कि चाहे लड़का कम उम्र का हो और लड़की ज्यादा उम्र की हो लेकिन फिर भी शादी कर देते हैं। एक बारात में मैंने देखा कि लड़का 15 साल का और लड़की 20 साल की, लगभग उम्र उनकी इतनी, तो उनकी शादी कर दी। मैंने बादशाह से पूछा जी, मैंने कहा ये कैसे हुआ। अरे के भैया बात ये, इस लड़की के घर में कम से कम 100-200 बीघा जमीन है पीवर। अब आप सोचिए 200 बीघा जमीन थी, उस लड़की को क्या लेना देना है लेकिन फिर भी शादी कर दी। तो इस गीत को मैंने हाथ में लिखा। वो लड़की उस छोटी उम्र के दूल्हे को देख करके उसके मन में क्या क्या बात आई होगी और वो भगवान से, जगदीश भगवान से ये प्रार्थना करती कि प्रभु तेने ये मेरे साथ क्या कर डाला, और अपने अंतर्मन की बात कहती है। गीत देखें आप आनंद लें और मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपका एक छोटा सा कवि हूँ, देखें आप। लड़की कह रही अपने मन की भावना उस छोटी उम्र के दूल्हे को देखकर।
किस साजन मिल गयो जी, कि बालम मिल गयो जी, 15 को मारी उम्र पूरी 20। साजन मिल गयो जी, 15 को मारी उम्र पूरी 20। अरे उम्र पूरी 20 कै उम्र पूरी 20 भरों को थारो रे जगदीश वालों लागे रे 15 तुम्हारे उम्र बोरे वे साजन मिल गयो रे 15 को मारी उम्र बोरे वे बालम लागे जी 15 को मारी उम्र बोरे वे बाबल देखी धरती बाड़ी बाबुल देखी धरती बाड़ी उम्र देखी थोड़ी कै बाबल देखी धरती बाड़ी उम्र देखी थोड़ी और वर्षा पाचो भी ढूंढी रे ऊंट बलद की जोड़ी कै वर्षा पाचो भी ढूंढी रे ऊंट बलद की जोड़ी लड़की एक बात पर ध्यान देखे आप क्या कहती है वर्षा पाचो भी ढूंढी रे ऊंट बलद की जोड़ी के मूचू पूरो थान मूचू पूरो थान बलम तो लागे से कटपीस वालम लागे रे हर वालम लागे रे 15 को मारी उम्र पूरे वे साजन लागे रे 15 को मारी उम्र पूरे वे घर में सुख देखियो सारो घर में सुख देखियो सारो पर मन की पीर न जानी के घर में सुख देखियो सारो पर मन की पीर न जानी फिर समुद्र बीचे आज मीन क्यों प्यासी चे बिन पानी या समुद्र बीचे आज मीन क्यों प्यासी चे बिन पानी के भालम टाबर जू लाग जो भालम टाबर जू लागे मर उठे काल जे ठीस वालम लागे रे हर साजन लागे रे 15 को मारी उम्र पूरे वे बालम मल गया रे 15 को मारी उम्र पूरे वे तो संग सहेलियां जाकर के बोलती क्या हुआ तेरे साथ एक पंक्ति देखे आप हे संग सहेलियां बोली गीता भाग फूट गया थारा अरे संग सहेलियां बोली गीता भाग फूट गया थारा ये घरवाला अंधा हो गया री टॉवर कर दियो लारा ये घरवाला अंधा हो गया री टॉवर कर दियो लारा जोबन की चुंगी मांगू मुझोबन की चुंगी मांगू यो उल्टी मांग फीस वालम लागे रे सर साजन लागे रे 15 को मारी उम्र बोरे वे वालम लागे जी 15 को मारी उम्र बोरे वे लेकिन सारे गीत में दो पंक्ति समाधान के और आपसे अपील करना चाहता हूँ कि गीत में कहीं सार्थकता हो तो मुझे आशीर्वाद दें क्या कहना चाहता हूँ अंत में देखें आप हे कटे जमारो सुख में जोड़ी मिलती मिलती ढूंढो के कटे जमारो सुख में जोड़ी मिलती जुलती है रो अर कान गुआलिया के संग में ते बेटी ने मत घेरो अर कान गुआलिया के संग में अनपढ़ के संग मेरे से तो बेटी ने मत घेरो कि गण मिल जावे गण मिल जावे तो भी थे तो गुण देखो 36 वालम लागे रे हर साजन लागे जी 15 को मारी उम्र पूरी बीस हर उम्र पूरी बीस के उम्र पूरी बीस भरोसो थोरो रे जगदीश मोलो
हेलो अभी आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे भाई बाबू बंजारा का एक गीत और आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैं उन्हें आग्रह करता हूँ भाई बाबू आए बाबू बहुत अच्छे हैं बड़े बचपन में भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं बचपन में भी बहुत तेज थे कक्षा में पढ़ रहे थे गुरुजी ने कहा बाबू खड़ा हो जा बहुत ज्यादा समझदार है पास वाले लड़के को खड़ा कर दिया जैसा बताते ना कि बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं तो बड़ी सहज बात बता रहा हूँ फिर गुरुजी ने कहा बेटे खड़े हो जा इस बार इधर वाले लड़के को खड़ा कर दिया गुरुजी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि तू खड़ा हो जा तो मैं नहीं हो सकता बड़े सहज अनुभूति में बच्चा कुछ भी कह सकता है तू खड़ा हो जा तो मैं नहीं हो सकता कि क्यों नहीं हो सकता तो इसलिए नहीं हो सकता हूँ कि मेरी गद्दी ढीली है तो तुम्हारी ढीली तो काका जी को लेके आओ तो उनकी तो मैं पहन के आया हूँ तो बड़ा सहज बचपन भी जिसका बहुत सहज निकला है और एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई बाबू बंजारा को वातावरण दीजिए ये क्रम जोड़ने के लिए एक बात थी बाबू बंजारा राजस्थानी के संगार का आज की तारीख में एक शीर्षस्थ गीतकार है, मैं एक बार फिर उदयपुर की धरती पर उसका स्वागत करता हूँ, भाई शिव बाबू बन जाए।
ऐसा वही सुना रही हूँ, बिल्कुल वही गीत सुना रही हूँ आप बताएं। गिरीश भाई से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जैसा वो मुझे बता रहे हैं। बात अब दरअसल ये है, इनके घर पर जब मैं गया तो वो बालक पढ़ने नहीं जा रहा था, तो मुझसे पूछा, यार बाबू ये बच्चा पढ़ने ही नहीं जाता है, क्या बात है। मैंने कहा जी इसको ड्रेस पहनाओ मत आज। तो कहे क्या करें। मैंने कहा इसको पजामा पहना करके भिजवा दो आप। तो कहे यार स्कूल में से भेजते हैं क्या। मैंने कहा ये बच्चा जो शरारती है इसकी शरारत सब सुधर जाएगी, कैसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ऐसे होगा, उस पजामे में थोड़ा सा नाड़ा आप ढीला करके भेजना, तो उससे क्या होगा। मैंने कहा उससे ये होगा कि पूरे दिन भर स्कूल में उसको ऊपर नीचे करने में ही लगा रहेगा, किसी की शरारती नहीं करेगा। ऐसा था। चार गीत देखते हैं आप, एक इसी प्रकार का हास्य का छोटा सा गीत, दाल बाटी वाले पढ़ते हैं। अरे यार एक और दूसरा पढ़ लें। अच्छा ठीक था, दाल बाटी वालों गीत देखो आप, बिल्कुल छोटो सो गीत। कहीं मेहमान यदि अपने घर पे आते हैं, मैं सोच रहा था एक दूसरा गीत मेरा मन का पढ़ देता हूँ। हाँ पहले हे, तीन चार साल के बाद मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा, क्यों जी अपने नगर में भी इतना बढ़िया मेला लगता है लेकिन आप मुझे कभी ले जाते नहीं हो। ये ईमानदारी की बात है, केवल आप एक छोटी सी कल्पना करें कि आप मेले में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आजकल के मेले कितने खराब हो गए। इस पर मैंने ये गीत लिखा है, आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। तो वो मुझसे बोली कि मेला दिखा दो। मैंने उससे कहा कि मेला देखना कोई अच्छी बात नहीं है, आजकल मेले बड़े खराब हो गए। वो कुछ चीजों की मांग करती है, डिमांड करती है, और मैं उसको समझाता हूँ। बस यहीं से लोक भाषा की एक छोटी सी बात देखें आप, वो मेला जाना चाहती मैं रोकता हूँ, इतनी सी बात। हे प्रिय जी मन मेलो दिखा दो, ये मन मेलो बता दो, प्रिय जी मन मेलो दिखा दो, ये कथे मन मेलो दिखा दो, जी मोर पप्पू का पापा थे मन मेलो बता दो, ये जी था पगलिया दाबू कथे कोटे मत जा जो मेला। ए मेलो लागे भारी, अरे मेलो लागे भारी जी, मैं घना यात्री आवे जी, मेलो लागे भारी जी, मैं घना यात्री आवे जी, भटपाड़ पे बांसुरिया में, भटपाड़ पे अलगोजा में बांसुरिया गरणावे जी, भटपाड़ पे अलगोजा में बांसुरिया गरणावे जी, ए जी बिजली तो झूला में मोने झूला झूला दो, ए जीवन झूलो झूला जो, ए जी मारा पप्पू का पापा कथे मन मेलो बता दो। कैसी मिठाई ककड़ाकंद पे मन आ गयो, पत्नी मांग करी थी ककड़ाकंद खिला दियो आप, मेला की बढ़िया मिठाई। ककड़ा कंद पो मन आगो या बर्फी खारी लागे जी, ककड़ा कंद पो मन आगो या बर्फी खारी लागे जी, मंगू जी की गरम पकौड़ी मारा मन में भागी जी, वा मंगू जी की गरम पकौड़ी मारा मन में भागी जी, ए जी रश्म डूब्या कहो जो मुने चखा जो, ए जी थे मैंने चखा जो, ए जी मारा पप्पू का पापा कथे मन। लेकिन समझाने का प्रयत्न किया मित्रों, देखो आप किस तरह से समझाया उसको, मेला में मत जावे, और मेला में मत जावे दाखो घुणो माचरियो हल्लोरी, मेला में मत जावे, और मेला में मत जावे दाखो घुणो माचरियो हल्लोरी, और कोई बगलिया वर चुमटिया कोई मारे ठल्लोरी, गाई बगलिया वरे चुमटिया कोई मारे ठल्लोरी, अरे घना मन चला सीटो दरियो फिल्मी गाना गावे, हरी 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 मेले मत जावे रे कथू मरा। लेकिन फिर भी वो श्रृंगार की क्या क्या चीजें मांगना चाहती है देखें आप।
काजल बींदी चुड़लो चोटी, काजल बींदी चुड़लो चोटी, कमर कनक तेला दोगी, काजल बींदी चुड़लो चोटी, कमर कनक तेला दोगी, सांगा नेरी छापा को, सांगा नेरी छापा को, एक लहरियो मने दिला दोगी, सांगा नेरी छापा को। और गांव की औरतें इस शोक को पूरा करना चाहती है, देखें आप एक पंक्ति में ध्यान, सांगा नेरी छापा को एक लहरियो मने दिला दियो जी, सांगा नेरी छापा को थे लहरियो मने दिला दियो जी, ए जी डाल गला में हाथ भंवर जी फोटो खिंचा दियो, ए जी मारो फोटो खिंचा दियो, ए जी मारा पप्पू का पापा कथे मन मेलो दिखा दियो। लेकिन अंतिम बार भी समझाए मित्रों, और बढ़िया बात देखें आप, मेला में मत जावे और मेला में मत चाले, दाखा घर की लाज बिगड़ जाए, मेला में मत जावे और मेला में मत चाले, दाखा घर की लाज बिगड़ जाए, कंचन सी थारी काया, कंचन सी थारी काया, यो मचड़ मोहिले हो जाए, कंचन सी थारी काया, कंचन सी थारी काया, री मचड़ मोहिले हो जाए, अरे काला जांबू नहीं पचगा तू तो बाट्या खा ले के, अरे तू
और भाई बाबू बंजारा ने आपको श्रृंगार की दो बेहतरीन रचनाएं सुनाई। इस देश के श्रृंगार को पड़ोसी देश बदनीति से देख रहा है। कश्मीर में पिछले दिनों लोहे के सलाखे डाक डाक कर और कई महिलाओं को पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। इस देश के श्रृंगार पर पड़ोसी देश अपनी अस्थिरता लिए हुए भी जिस ढंग की परिस्थितियां और मनस्थितियां जी रहा है, एक कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जो ओजपूर्ण वातावरण में उस पड़ोसी देश के नाम एक खत पढ़ना चाहता है। भाई ओम वीर रस के युवा कवि हैं, मंचों पर अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं, आदरणीय शर्मा जी भी विराजमान हैं। मैं आप सबको तालियां बजाकर उन्हें वातावरण देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। इस मेवाड़ की गौरवमय भूमि पर हाड़ोती के वीर रस के कवि अपनी कविता का मुझे विश्वास है कि वो उसी तरह एहसास करेंगे जिन क्षणों में भाई ओम ने अपनी रचना लिखी है। उनको चार पंक्तियां दे रहा हूं। किसी कवि ने कहा है कि खून का टीका लगाओ अपने स्वाभिमान को, खून का टीका लगाओ अपने स्वाभिमान को, कब तक पीते रहोगे अपने अपमान को, अब तो फन कुचलने का समय भी आ गया, जो सांप बनकर डस रहे हैं अपने हिंदुस्तान को। भाई ओम आए और अपनी कविता से इस वातावरण को आगे बढ़ाएं। ओम सोनी मधुर अंता।
बेगम कहना मान नहीं तो एक दिन फिर पछताएगी, सूरज को छूने के मद में अपने पंख जलाएगी। बेगम कहना मान नहीं तो एक दिन फिर पछताएगी, सूरज को छूने के मद में अपने पंख जलाएगी। हम राणा के वंशज हैं, यमराज तलक से नहीं डरते, पर अपने छोटे भाई का शीश कलम हम नहीं करते। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाई शब्द का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि राम की धरती का कवि हूँ, वो संस्कार मेरे में जिंदा है, वरना क्या होगा। ये कविता सुने और आशीर्वाद दें, कविता देखें। बेगम कहना मान नहीं तो एक दिन फिर पछताएगी, सूरज को छूने के मद में अपने पंख जलाएगी। हम राणा के वंशज हैं, यमराज तलक से नहीं डरते, पर अपने छोटे भाई का शीश कलम हम नहीं करते। कश्मीर की धरती हमको प्राणों से भी प्यारी है, और तेरे खूनी पंजों के कटने की तैयारी है। कश्मीर की धरती हमको प्राणों से भी प्यारी है, और तेरे खूनी पंजों के कटने की तैयारी है। राम की धरती के लोग हैं, इसलिए संस्कार के माध्यम से क्षण कि हम रघुवंशी रावण को अंतिम क्षण तक समझाते हैं। इतिहास उठाइए, हम रघुवंशी रावण को अंतिम क्षण तक समझाते हैं, फिर अंगद का पांव जमाकर थोड़ा भय दिखलाते हैं। विनय न मानेगा यदि सागर सोखेंगे मजबूरी है, निश्चरहीन धरा होगी संतों का हवन जरूरी है। बानर भालू की सेनाएं जिस दिन शंख बजाएंगी, कांप उठेंगी दिशा दिशाएं, दानवता थर्राएगी। सूरज माली लंका के अब चलने की तैयारी है, और तेरे कूनी पंजों के कटने की तैयारी है, और तेरे कूनी पंजों के कटने की तैयारी है। जिस परमाणु बम की दहशत आज सारे विश्व में पाकिस्तान फैला रहा है, उस परमाणु बम पर एक क्षण पढ़ना चाहता हूँ। क्षण देखें कि हम तेरे अग्नि बाणों की करते हैं परवाह नहीं, हम तेरे अग्नि बाणों की करते हैं परवाह नहीं। यहाँ कन्हैया माँ भारत का नायक है चरवाह नहीं, शकुनी तेरी इन चालों का हम पर असर नहीं होगा। दुर्योधन तू लाज जतन कर ले पर अमर नहीं होगा। धर्म युद्ध में मानवता पंडित होती है हो जाए, लाखों से मंडित गर धरती होती है तो हो जाए। भारत का हर बच्चा बच्चा चक्र सुदर्शन धारी है, और तेरे कूनी पंजों के कटने की तैयारी है, और तेरे कूनी पंजों के कटने की तैयारी।
और तेरे खूनी पंजों के कटने की तैयारी है। भाई ओम ने अपनी बेहतरीन रचना आपके बीच में पढ़ी, शायद गला उनका बराबर साथ दे रहा है। सुरेंद्र जी को भी निसंदेह सुने, यही उनके साहित्य में यह आयोजन चल रहा है। आइए मैं अन्य कवियों को बुलाऊं, उससे पूर्व इस वातावरण को किसी हास्य रस के कवि को सौंपा जाए। एक कवि है धमचक मुल्तानी, रतलाम के कवि हैं, आपने उनको कई बार सुना है, बहुत ही अच्छा कवि है। एक गली से दो बच्चे निकले, मैंने कहा बेटे किनके बच्चे हो, बच्चे मेरे और गिनती भाई साहब लगा रहे हैं। गली में दो बच्चे निकले, मैंने कहा किनके हो, तो कहे धमचक जी के। फिर दो बच्चे निकले, क्या मैंने कहा बेटे किनके बच्चे हो, तो कहे धमचक जी के। फिर दो बच्चे निकले, मैंने कहा बेटे किनके हो आखिर, तो कहे धमचक जी के। मैंने कहा आखिर पिताजी क्या करते हैं, तो कहे यही करते हैं। बड़ा अच्छा कवि है धमचक मुल्तानी। आइए रतलाम के उस युवा कवि को वातावरण दीजिए, जो श्रोता या मनस्थिति से कवि सम्मेलन को प्राणवान बनाने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें यह हास्य कवि रतलाम का आया हुआ समर्पित करता हूँ। तालियां बजाइए, धमचक का स्वागत कीजिए।
वर्ण नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। मैं आपको एक कविता सुना रहा, पसंद आई तो एक दो और सुनाऊंगा, और नहीं आई तो जब तक पसंद नहीं आएगी तब तक सुनाऊंगा। जानता हूँ कि यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे श्रोता हैं कि इनका तो निर्यात किया जाना चाहिए। ये खुश रोता तो मेरे सामने ऐसे जम के बैठे हुए जैसे ससुराल में जमई साहब बैठते हैं। अब आप जानते हैं कि जमई दो तरह के होते हैं, एक जमई होता है, दूसरा घर जमई होता है। मैं कलकत्ता कवि सम्मेलन में गया, वहां मुझसे एक ने पूछा, धमचक जी ये घर जमई किसे कहते हैं? मैंने कहा दुल्हन के बाप को दूल्हे, उसे हम ब्याई कहते हैं। विवाह से पूर्व कांटेक्ट को सगाई कहते हैं। आदमी जिस खूंटे से बंधे उसे लुगाई कहते हैं, और लुगाई के घर रहे उस गधे को हम घर जमाई कहते हैं। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ कितने घर जमाई हैं। हाँ, ये आप काहे के लिए आए? खींचना तो खींच लो। अब ये देख रहे हैं कि किसका खींचूं, और मेरे ही खींच लो। फोटो खींच रहे हैं, हृदय कली को खींच रहे हैं। पर एक बात बतलाओ मिस्टर, ये हेरा क्यों खींच रहे हैं? खींच रहे, बीच में आ गए, अब नहीं आएंगे। मैं आपको और थोड़े थोड़े कविताओं से जोड़ना चाहता हूँ। मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग फूल के हंस रहे हैं, और हंसना विधाता ने इंसान की किस्मत में लिखा है। आपने कभी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा, देख भी नहीं तो समझना कि वो इंसान हो रहा है। और किसी इंसान को आप हंसते हुए नहीं देखे तो समझना कि ये जरूर जानवर हो रहा है। अब मैं नहीं हंस रहा हूँ तो यहाँ मेरे बारे में सब ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि आप तो जानते ही कि हंसने वाला पुरुष होता है और हंसाने वाला महापुरुष होता है। कई प्रकार के कवि सम्मेलन जाते, कई तरह के लोग प्रश्न पूछ लिया करते हैं, उसके हमें जवाब देना पड़ता है। कई प्रकार के श्रोता कवि सम्मेलन में आते हैं, कुछ श्रोता पुरुष बन के आते हैं, महापुरुष बन के चले जाते हैं, तो उनके हमें जवाब देना पड़ता है। तो एक बार एक मित्र ने पूछा कि धमचक जी, विवाह के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है? मैंने कहा भरता है। वो बोला बताइए ऐसा क्यों करता है? मैंने कहा इसमें कोई क्या करे, अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे, अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे। फिर सीमेंट का कलर हरा होता है, सिंदूर का कलर लाल होता है, जिसे भरने के बाद आदमी पहली बार हलाल होता है। और हलाल होने की पहली शर्त है कि आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरे, फिर जीवन भर उसके मांग की पूर्ति करे। और बेचारा करता है, और जो नहीं करता है वो जीवन भर अटल बिहारी रहता है। हाँ सुना रहा हूँ, मैं तो वैसे ही कह रहा था यार। मैंने आपको पहले कहा जब तक आपको पसंद नहीं आएगी तब तक मुझे लग जाएगा कि हाँ। मैं एक और रचना से आपको जोड़ना चाहता हूँ। छोटी छोटी कविताएं कहाँ से कहाँ निकल जाती, कहाँ कहाँ बात हो जाती है, उन कविताओं से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। एक चिंतन की कविता सुनाना चाहता हूँ मित्र। जहाँ व्यंग की बात आएगी वहाँ व्यंग की बात होगी, यहाँ हास्य की बात होगी वहाँ हास्य की बात होगी। मैं कविता से जोड़ना चाहता हूँ कि आज आदमी चिंता में जीता है, चिंता में मरता है, चिंतन की बजाय बस चिंता करता है। और चिंता भी कई कई होती है, कुछ पुरानी कुछ नई होती है। जैसे पिता को पुत्री की शादी की चिंता, सरकार को खादी की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, नौकरी मिल जाए उसे छोकरी की चिंता, और छोकरी को अपने सुंदर सुंदर केस की चिंता, और जितने भी लोग फालतू हैं उन सबको देश की चिंता। तो एक फालतू सज्जन मेरे पास आए, साथ में ताजा अखबार लाए, उसे पढ़ते हुए बोले कल रात अकस्मात एक महिला पड़ गई पुलिस के हाथ, और पुलिस वालों ने मिलकर फिर उसके साथ भला का सत्कार किया। इस खबर को हमने गंभीरता से नहीं लिया, तो मित्र बोले धमचक जी देखो कैसा जमाना आ रहा है, मानव आज मानवता को खा रहा है। मैंने पुलिस का समर्थन करते हुए कहा इतनी सारी बुराइयां तो नहीं है पुलिस के पास में, अरे इससे तो बड़े बड़े कांड होते हैं आजकल मंत्रियों के निवास में।
आजकल बड़े बड़े कांड होते हैं मंत्रियों के निवास में, और आज के मंत्री किसी राजा महाराजा से क्या कम है जो जनता की छाती पर बैठ कर गाते हैं ये प्यार का मौसम। मैंने कन्फर्म मंत्री से कहा कि माननीय मंत्री जी, यदि आप पढ़े लिखे होते तो क्या होता? मंत्री जी बोले, तब कष्ट बहुत बड़ा होता। जिस तरह अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, मैं भी किसी के सामने खड़ा होता। इतना कहकर मित्र जाने लगा। जाते जाते फिर देश के बारे में बताने लगा, कहाँ क्या चल रहा है, कौन से प्रदेश का कौन सा मंत्री कब अपना दल बदल रहा है। मैंने कहा, बदलने के नाम पर देश की हवा बदल रही है, विरोधियों में एकता चल रही है, अंतुले तुल रहे हैं, पुराने पाप धुल रहे हैं, धीरे धीरे सबके दरवाजे खुल रहे हैं। मैंने कहा, जनता की किस्मत के दरवाजे कब खुलेंगे? वे बोले, इसका उत्तर देने के लिए हम आपको अगले जन्म में मिलेंगे। हम अगले जन्म में मिलेंगे पंक्तियां देखिए, क्योंकि इस जन्म में इस देश की जनता का मालिक भगवान है, और भगवान का मालिक न्यायालय है, और न्यायालय से तो अब भगवान भी डरेगा, क्योंकि राम कहां जन्मे थे इसका फैसला अब न्यायालय करेगा। और न्यायालय फैसला कर दे, इसकी क्या गारंटी? और फैसला हुआ तो जनता मानेगी, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में मजा ही मजा है। कौन करता है जुर्म और कौन पाता सजा है, फिर मजे के बारे में किसी को क्या बताएं? मजे का क्या भरोसा, पता नहीं कब आ जाए। न्याय तो रात भर नहीं आए, और आए तो सवेरे होते होते आ जाए। कवि सम्मेलन के मजे सवेरे होते होते आते हैं, इसलिए आप सवेरे तक बैठे रहे, पता नहीं कब मजा आ जाए, क्योंकि ये मजे का जमाना है। और मजे मजे से हमें 21वीं सदी में जाना है। पंक्ति देखिए, मजे मजे से हमें 21वीं सदी में जाना है, क्योंकि 20वीं सदी से सबका मन भर गया है। अरे आज भाई तो जिंदा है, परंतु भाईचारा मर गया है। और जब भाईचारा मर जाता है, तब भाई भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नजर आता है। फिर भाई के हाथ भाई के खून से सन जाते हैं। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे आतंकवादियों के शरण स्थल बन जाते हैं। आतंकवाद का नाम सुनते ही मित्र को आक्रोश आ गया। बोला, यार इस देश में तो समाजवाद आने वाला था, ये आतंकवाद कहाँ से आ गया? मैंने कहा, आतंकवाद उस रास्ते से आया है जिस रास्ते से इस देश में गाजर घास आई है। आतंकवाद की आग को हमारे पड़ोसी ने जलाई है, वो जलती आग में अपने हाथ सेक रहा है, धर्म के कंधों पर बैठकर देश के टुकड़े होने की राह देख रहा है। तो आओ हम सब मिलकर कसमें खाएं, धर्म के नाम पर दोबारा ये देश न बटने पाए। अरे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या पठान, क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या गुरुद्वारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। ये आपने इतनी अच्छी कविता सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ना पिछले कवि सम्मेलन में मैंने इससे भी अच्छी अच्छी कविता सुनाई, किसी श्रोता ने ताली नहीं बजाई। बड़ी देर बाद एक कोने से सिंगल ताली की आवाज आई। मैंने सोचा समझदार श्रोता इधर ही बैठा है, जब गौर से देखा तो व्यक्ति तम्बाकू मसल के चूना उड़ा रहा। तो ऐसी बात नहीं, श्रोता ऐसे मिल जाते हैं, कई बार संयोजक हमारे मिल जाते हैं। हमारे राठौड़ जी ने हमसे कहा कवि सम्मेलन के लिए, बोले धमचक जी आपको कवि सम्मेलन में आना है। मैंने कहा जाऊंगा। ये बोले पेमेंट क्या लोगे? मैंने कहा आप जो सुरेंद्र शर्मा जी को दो उससे 100 रुपए कम दे देना। ये बोले कि आ जाओ, हम उनको 100 ही रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हमको तो उन्होंने हमके वाले बोले, वो तो क्या है कि दरअसल उनको गिरजा व्यास जी ने बुलाया, और व्यास जी जो उनको देंगे वो 100 ही रुपए होंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, ऐसे मतलब ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ के संयोजक भी ऐसे, यहाँ के लोग भी कम नहीं। मैंने यहाँ आया, मैंने पूछा मेरे साहब ये लोक कला मंडल का रास्ता किधर? इधर ही। बोले के हो। दूसरे से पूछा साहब लोक कला मंडल का रास्ता इधर ही? बोले हो। तीसरे से पूछा बोले हो। चौथे से पूछा बोले हो। पांचवे से पूछा बोला जी हाँ। मैंने कहा एक बात बताओ भाई साहब, यहाँ मैं जिससे पूछ रहा हूँ हो करके जवाब दे रहा है, आप पहले ऐसे व्यक्ति जो जी हाँ करके बोल रहे हैं? वे बोले भाई साहब ऐसा है कि ये उदयपुर है, यहाँ अनपढ़ व्यक्ति हो करके बोलता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जी हाँ करके बोलता है। मैंने कहा तो फिर आप पढ़े लिखे हैं? वो बोला हो। ये अपनी अपनी भाषा का चक्कर है, अपनी अपनी बोली का चक्कर है। लोग अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। हमारे गुजरात में जैसे अपन जाते हैं ना, गुजरात के अंदर हे को छे बोलते हैं, छे कोई भी बात होती जैसे अपन है बोलते हैं वो छह बोलते हैं। एक बार व्यक्ति उधर का व्यक्ति इधर इंटरव्यू देने आ गया तो इंटरव्यू वाले उस व्यक्ति ने पूछा उससे कि तुम्हारे पिताजी हैं तो बोले छह। ये बोली का चक्कर है। ये मैं आपका रतलाम क्षेत्र से आया, ये राजस्थान आपका बिल्कुल मिला हुआ, यहाँ की राजस्थानी बोली हमारे रतलाम की बोली, हमारे बिल्कुल मिली जुली भाषा, यहाँ के जो संस्कार है वो हमारे यहाँ बिल्कुल मिलते जुलते हैं। लेकिन राजस्थानी भाषा में अभी आपने बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई, हमारे मालवी क्षेत्र में बहुत अच्छी कविता, बिल्कुल राजस्थानी और मालवी ऐसी जैसे दोनों बहने हो। और इसमें एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई। इस कविता को मैंने शीर्षक दिया है हेरी जात की। जैसे बनता बनता कोई काम बिगड़ जाता है तो अनायास हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है हेरी जात। जैसे कल आप एक दूसरे को मिलेंगे तब यही कहेंगे कि हेरी, ये जैसे चल दिया तो हेरी। तो एक ताकत का वर्णन देखिए, जैसे मैं ताकत के वर्णन से जोड़ना चाहता हूँ कि एक दिन हम शहर में सिनेमा देखवाने गया, साथे दो चार दोस्त और हुई गया। सिनेमा देखवा की हरक बड़ी रही थी, टिकट खिड़की में बड़ी भीड़ पड़ी रही थी। भीड़ भड़का में खोवाणी हाथ की घड़ी, ऊपर से होमगार्ड का डंडा की भटाभट पड़ी। डंडा खाया धक्का खाया कई को बात मणी रात की, फिर भी टिकट नहीं मिली हेरी जात की। आपको मालूम समझ में आई क्या? अब अगला अध्याय देखिए। दरअसल मैंने देखा कवि सम्मेलन में तीन चार तरह के श्रोता आते हैं, बाल श्रोता आते हैं। ये बाल श्रोताओं के लिए थे, अब ये कुछ नौजवान श्रोताओं के लिए। इसमें बुड्ढे भी सुने तो कोई आपत्ति नहीं। एक कमल कली सी कुमारी कन्या मारकने आई, सजी धजी ने सुरपण खासी शादी को प्रस्ताव लई। प्रस्ताव गलत नहीं तो बात मारा मन की थी, जब हृदय में समय की तो फिर खामी लगन की थी। तो लगन भी लग्या ने गीत भी गवाया, पतासा की बचत से पड़ोसी ने बुलाया। शादी का सब काम सस्ता ही सस्ता में निपटाया, और पंडित की बजाय फेरा पंडा से करवाया। पर अब समस्या ये आई कि हनीमून का मनाए। आजकल ये फैशन हो गया, लोग विवाह के बाद हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। पुराने लोग पहले हनीमून नहीं हनुमान मनाते थे। पर अब समस्या ये आई कि हनीमून का मनाए, कौन सो ऐसा शहर जहाँ अपन जाए। तो सबसे सस्तो काम शिमला को नजर आयो, पास में उसके बिठे ने धीरे से पटायो कि देख टोक्यो जाने में टाट का बाल भोपाल उड़ी जाएगा। यो पैसो रहेगा तो फिर बाद में काम आएगा। तो यह बात उनके समझ में आई, बांधे बिस्तर ने रजई दबाई। फिर सड़क धाम जैसी शिमला में आया, प्रेम का गीत मन ही मन गाया। फिर होले होले पड़ी रात, इशारा इशारा में हुई बात। और जब घड़ी आई सुहावनी रात की, इतना में नींद खुली गई है। और इसका अगली अंतिम अध्याय है, आगे क्या है? मतलब हिंदुस्तान में लोग खाने पीने में ही लगे हैं। जिसे देखो वही खा रहा है, और खा क्या रहा है हम देख रहे हैं। कोई खा रहा है तो मना ही कर रहा है। अभी हमारे सुखराम जी के यहाँ पैसे निकले तो उनसे पूछा ये पैसे, बोले मेरे नहीं ये तो पार्टी के हैं। और पार्टी वालों से पूछो ये किसके हैं तो बोले कि हमारे नहीं है। अरे जब मैंने कहा कि ये इसके भी नहीं है उसके भी नहीं है तो मेरे हैं, मेरे को दे दो, तो मेरे को दे ही नहीं रहे। सुखराम जी से पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे नहीं है। अब वो बता ही नहीं रहे किसके यार, हमारे उदयपुर के पुलिस वालों के, उनको सुखराम जी को सौंप दो, वो दो घंटे में उकलवा लें कि ये किसके हैं। मैं और अंत में जोड़ना चाहता हूँ कविता सुनिएगा कि शंकर जी भांग खेले तो नीरे भान, भस्मासुर जैसा के दई दे वरदान। वर दईने पाछे से पछताए, पाछे पाछे भस्मासुर ने आके शंकर जी नहाए। पीछे छुट्यो जद विष्णु ने मोहिनी सूरत बनाई, शंकर जी बोलिया जान बची लाखों पाई। वर कही तो थी करामत हाथ की, या कथा थी बोला नाथ की, जय बोलो अम्बे मात की। कोई नहीं बोलिया हे रास की। ये अपनी बोली का चक्कर था, अपने अपने क्षेत्र की बोली होती है और उसमें बात होती है। अभी हमारे कवि मित्र बड़े प्रेम से चाय पी रहे हैं। चाय पीना भी एक कला है, और कैसे पी जाती है आप सब देख रहे हैं। ये हम चाय पीने के लिए हमें कई प्रकार की बातें होती है। मैं एक बहुत भिखारी की कविता मुझे याद आ गई, वो सुनाना चाहता हूँ, चाय के ऊपर आ गई। हम जा रहे थे कवि सम्मेलन में, हमारे साथ में भाई बंजारा जी भी थे। उनको एक भिखारी आया जिसे बोला बाबू जी 10 पैसे दीजिए चाय पीऊंगा। इन्होंने कहा चाय तो 1 रुपए में आती, तू 10 पैसे ही मांग रहा है। भिखारी बोला ऐसा है बाबू जी की पैसा आदमी देख के मांगना पड़ता है। जब इन्होंने 10 पैसे नहीं दिए तो वो मेरे पास आया, बोला बाबू जी 2 रुपए दीजिए चाय पीऊंगा। वो मेरे स्टैंडर्ड को समझता था। मैंने कहा यार चाय तो 1 रुपए में आती है, तो 2 रुपए किस बात का मांग रहा है। वो बोला मेरे साथ आप नहीं पियेंगे। तो मैंने उसे 10 रुपए दिए, मैंने 10 रुपए रख लिया। वो बोला बाबूजी 10 रुपए मत दीजिए। मैंने कहा रख लिया। वो बोला बाबूजी मत दीजिए। मैंने कहा क्यों? वो बोला मैं भी पहले ऐसे ही देता था।
भाई धमचक ने आपको निसंदेह जी भर के हंसाया और उनका काव्य पाठ करना सार्थक रहा, क्योंकि गंभीरता में सबको हंसाने वाले, संपूर्ण देश को हंसाने वाले सुरेंद्र शर्मा जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ये भाई धमचक के लिए भी एक बहुत ही गौरव की बात है। भाई धमचक का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं इस क्रम को तोड़ना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में आपकी मनस्थिति तक मैं इस आयोजन की शुरुआत से यहाँ तक बहुत ईमानदारी से काव्य पाठ करने के लिए कवियों को आमंत्रित करता रहा। इस क्रम को तोड़ना चाहता हूँ। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जिस कवि को बुला रहा हूँ मैं कहीं कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक स्थानीय कवि को बुलाना चाहता हूँ। बहुत ही साहस के साथ उसने इस कवि सम्मेलन में भाग लेने का मन बनाया है, लेकिन आपके शहर के अतिरिक्त जिन मंचों पर वो काव्य पाठ कर रहा है उसे पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। इस शहर के कवि हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा। संपूर्ण देश में उन्होंने ख्याति अर्जित की। वे आज इस आयोजन में उपस्थित नहीं है, लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण से, गीत के दृष्टिकोण से मैं उनकी अनुपस्थिति में उन्हें प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने पैरोडी के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान में ख्याति अर्जित की। पंडित जी के पद चिन्हों पर चलता हुआ एक और युवा कवि पैरोडी के माध्यम से इस शहर की जनता का आशीर्वाद चाहता है। आशीर्वाद देने का दायित्व आपका है, उसका दायित्व है कलम उठाने का। एक इस शहर का कवि है आजाद शत्रु, उसका एक छंद है, उस छंद से मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूँ। आशीर्वाद आप दें। आप जाने आजाद शत्रु का छंद है कि भाषा में सुधार किया, सुर को भी बांध लिया, छंद छंद लोगों के दिलों में बींध जाएंगे। भाषा की जो छतरी बनाई नहीं तुमने तो अक्षरों में भीगे हुए छंद भीग जाएंगे। पारखी नगीनों के जो जोहरी नहीं रहे तो हीरे सारे कोड़ियों के मोल बीत जाएंगे। पारखी नगीनों के जो जोहरी नहीं रहे तो हीरो सारे कोड़ियों के मोल बिक जाएंगे। और हंसी और बगुले में भेद जो नहीं किया तो कोयल की बोली सारे कौवे सीख जाएंगे। कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्थानीय कवि है भाई सिद्धेश्वर सिद्धी। सिद्धू, आपके शहर के बाहर उन्हें आशीर्वाद मिला है, आज आप आशीर्वाद दें। सिद्धू आए, तालियां बजाएं। भाई सिद्धू,
मैं विश्व के साथ कई दूसरे शहरों में आशीर्वाद मिला, मंच पे बहुत सराहना मिली। मुझे आशा और प्यार मोहब्बत आपकी मिले तो मजा आ जाए। मैं पैरोडी एक पढ़ रहा हूँ, एक गीत आपने सुना होगा, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं अभी जो नरसिम्हा राव, मेरी सोच में, मेरी मानसिकता में, मेरे मन में ऐसा लगता है कि नरसिम्हा राव अभी मस्त हो गए, उनसे ज्यादा कोई मस्त व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जेल जाने से भी बच गए, दूसरे सारे लफड़े मिट गए, सुखराम भी छूट गया, सब कुछ मामला मस्त है। मैं इसी बात को लेकर एक रचना आप तक दे रहा हूँ, ये नरसिम्हा राव मस्त है। कैसे आशीर्वाद चाहूंगा। ये राव हो गए मस्त मस्त, ये राव हो गए मस्त, अब राव हो गए मस्त मस्त, अब राव हो गए मस्त। नरसिम्हा इनका नाम नाम, नरसिम्हा इनका नाम नाम,
धन लेना इनका काम काम, नरसिम्हा इनका नाम नाम, धन लेना इनका काम काम, गपलों में हुए बदनाम नाम, कब उल्टा इनका तख्त तख्त, अब राव हो गए मस्त मस्त, अब राव हो गए मस्त। पहला बन दे रहा हूँ के मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा, मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा, चंद्रा स्वामी सबकी महबूबा, मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा, चंद्रा स्वामी सबकी महबूबा, लखू का यहाँ है शोर शोर, लखू भाई लखू का यहाँ है शोर शोर, फुल्लन का यहाँ है जोर जोर, देश को रख दिया गिरवीन ने, देश को रख दिया गिरवीन ने, अब बनते गांधी भक्त भक्त, ये राव हो गए मस्त मस्त, अब राव हो गए मस्त, नरसिम्हा इनका नाम नाम, धन लेना इनका काम काम, गपलों में हुए बदनाम नाम, कब उल्टा इनका तख्त तख्त, अब राव हो गए मस्त मस्त। दूसरा बन दे रहा हूँ, धन्यवाद। एक बंद और दे रहा हूँ आपको के बोल जरा तू, तूने कितना खाया, टेलीफोन का तार बिछाया, सुखराम के साथ में जो मिलके खाया, के बोल जरा तू, तूने कितना खाया, टेलीफोन का जो तार बिछाया, बिशंकरन दे शोर शोर, बिशंकरन दे शोर शोर, रामेश्वर ठाकुर चोर चोर, घर में ही बैठा चोर चोर, सब बाहर करते गश्त गश्त, ये राव हो गए मस्त मस्त, अब राव हो गए मस्त। अंतिम बंद दे रहा हूँ मैं आपको, एक और बंद दे रहा हूँ मैं आपको, खुला हवाला मुंह पे ताला, राजनीति का ये गंदा नाला, खुला हवाला ये मुंह पे ताला, राजनीति का ये गंदा नाला, खुला हवाला ये मुंह पे ताला, राजनीति का ये गंदा नाला, बंदूके आप सुन ले अंतिम बंद, नरसिम्हा राव ने अभी अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, के पद से पाली है मुक्ति, पद से पाली है मुक्ति, क्योंकि लगने लगी है दस्त दस्त, ये राव हो गए मस्त।
आप सबके बीच में बुलाना चाहता हूँ जो मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़ने जा रहे हैं, युवा हस्ताक्षर युवा कवि भाई शशांक आगरा, तालियां बजाइए, शशांक को आशीर्वाद दीजिए, शशांक आए और अपनी कविता से कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाए, श्री शशांक।
प्रेम और एहसास की इस अंजुमन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ और अपने युवा दोस्तों को से प्रेम मांगता हूँ, एहसास मांगता हूँ, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, आपको अच्छी लगे, मेरे दोस्तों मेरे युवाओं को पसंद आए तो मैं आगे बढ़ने की कुछ कामना कर सकूंगा। चार पंक्तियां देता हूँ मैं, लोग माँ सरस्वती की को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। चार पंक्तियां मैं इस देश की मातृभूमि को देना चाहता हूं, वो इसलिए कि जिस मातृभूमि के हम अंदर पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं, उस मातृभूमि का कर्ज उतारने का वक्त आता है। चार पंक्तियां मैं इस देश की मातृभूमि को देना चाहता हूं, आप सभी का आशीर्वाद अच्छी लगेगी तो कविता आगे जारी रखूंगा। चार पंक्तियां कि मौत तो मैंने इस मुट्ठी में दबा रखी है, कि मौत तो मैंने इस मुट्ठी में दबा रखी है और ये जिंदगी गीतों में सजा रखी है, कोई तलवार मुझे काट नहीं सकती है, मेरे माथे पे मेरी माँ की दुआ रखी है। कि मौत मौत तो मैंने इस मुट्ठी में दबा रखी है और ये जिंदगी गीतों में सजा रखी है, कोई तलवार मुझे काट नहीं सकती है, मेरे माथे पे मेरी माँ की दुआ रखी है। और दोस्तों, मेवाड़ की जनता, मैंने सुना है मेवाड़ की जनता के बारे में, मेवाड़ की भूमि के बारे में, लोग यहाँ कविता से प्यार करते हैं, साहित्यिक दृष्टि को बड़े उच्च स्थान से देखते हैं, राजनीति चुटकुलेबाजी हमारे पैर की जूती है, मैं आपको बता रहा हूँ, साहित्य हमारे सर का ताज। चार पंक्तियां मैं अपने युवाओं दोस्तों को देना चाहता हूँ कि आपकी इस क्रांति जो आप मुझ पे कह रहे हैं, इस देश की क्रांति बना दो, चार पंक्तियां मैं आपका वजूद, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी आपको देना चाहता हूँ। एक कृष्ण बिहारी नूर ने एक बहुत अच्छा शेर कहा कि कतरा हूँ पर मेरा वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। चार पंक्तियां मैं देना चाहता हूँ इस युवा वजूद को, इस युवा पहचान को कि पानी पे भी तस्वीर बनाता हूँ मैं, अपनी पहचान युवा दोस्तों को देता हूँ कि पानी पे भी तस्वीर बनाता हूँ मैं, शब्दों को भी शमशीर बनाता हूँ मैं, और तकदीर पर करते हैं भरोसा कायर, तकदीर की तकदीर बनाता हूँ मैं। कि हम उत्तराखंड चले जाओ, आज आप भी दीवारों पर जाकर पढ़ लेना उत्तराखंड के लिए चार पंक्तियां मैंने कही। युवाओं की बात करता हूँ, अपनी पहचान की बात करता हूँ, कि हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, कि हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम जो चलते हैं तो पर्वत भी दहल जाते हैं, और हमको यार बदलने की ना कोशिश करना, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। घटना ऐसी मुझे ये घटना मुझे याद आती है कि लोकसभा के चुनाव से एक सरदार जी इसी तरह से नरसिम्हा राव जी के पास पहुंचे और बोले आप क्या करते हो, आप आपने अटल जी को जिनेवा भेजा, वो कश्मीर की समस्या सुलझा नहीं सके, आप इतने बड़े बड़े शिखर सम्मेलन कर रहे हो, कुछ होता है उनसे, आप मुझे एक मौका दो, मैं कश्मीर की समस्या 2 मिनट के अंदर हल कर दूंगा। और एक सरदार एक प्रधानमंत्री के पास पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, सरदार जी हम आपके वीर शौर्य से पूरी तरह से परिचित हैं और हम चाहते हैं कि आप इस मसले में भाग ना लें। लेकिन सरदार जी अटक गए, बोले नहीं साहब आप मुझे टाइम दें बिल्कुल और मैं कर दूंगा, आप मेरे पहले जो मैंने सोल्यूशन दिया है आप उसको ध्यान से सुने। बोले नहीं यार तुम छोड़ो यार, हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो। लेकिन सरदार जी जो है अनशन पर बैठ गए। खैर हार कर नरसिम्हा जी ने उनको टाइम दिया, बोले अच्छा बताओ तुम्हारा क्या सोल्यूशन है, कैसे समस्या सुलझा सकते हो। बोला कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिए मैं बेनजीर भुट्टो से शादी कर लूंगा। बोले तो उससे क्या कश्मीर समस्या हल हो जाएगी। बोला 100% हल हो जाएगी। नरसिम्हा ने पूछा कैसे, बोले कश्मीर से दहेज मांग लूंगा। चार पंक्ति ऐसी बात पे कहता हूँ दोस्तों, प्रेम और एहसास की बात, कि अपना चर्चा है हर कहानी में, कि अपना चर्चा है हर कहानी में, अपना चर्चा है हर रवानी में, तुम बुझाते हो आग पानी से, हम लगाते हैं आग पानी में।